योग्य होने पर भी यहां मूर्धन्य विद्वान यहां पर रहते हैं, स्वयं गुरु स्वामी लोग बड़े विद्वान लोग हैं, इस पर भी मैंने भक्ति विनोद ठाकुर के आत्मचरित्र में मैंने देखा मधुसूदन गोस्वामी जी के बड़े आभारी हुए। हमारा समस्त गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का आधारित है। जब जब भक्ति विनोद ठाकुर जी को और जगत गुरु नित्य लीला परिश्रम विष्णुपाल कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी को कोई भी आवश्यकता हुई, सारा बंगाल का समाज समाज उनका विरुद्ध हो गया, उस समय में इन लोग के पृष्ठपोषक राधा रमन के ये शिष्य मधुसूदन गोस्वामी जी थे। मैं सुनता से और भी अभी गोष्ठ हुआ कल हमारे परम पूजनीय गौरकृष्ण जी और पद्मनाथ जी कह रहे थे कि सिर्फ मधुसूदन जी की गोस्वामी जी की डायरी में ये सब लिखे थे। कभी देखूंगा ये सब बड़ी अच्छी चीजें हैं। तो मैं न तो विद्वान हूं न कथावाचक हूँ। गुरु जी ने मुझे कृपा करके तो साधारण गाँव से भक्ति साधन करने के लिए आदेश दिया, थोड़ा सा प्रचार करने का भी आदेश दिया, प्रचार समय नहीं। तभी हमारे पूज्य विशंभर जी गोस्वामी बहुत ही मुझे स्नेह करते, वैसे ही हमारे विद्वत वर्ग बहुत ही समूह थी मुझे बहुत स्नेह करते, इसलिए उनको यहाँ पर श्रीराधा मंदिर की कृपा ग्रहण करने के लिए मुझे अवकाश दिया। मैं कुछ पाठ प्रवचन करने के लिए नहीं आया, मैं कुछ निवेदन करने के लिए आया। इच्छा थी जो सुनू तो उसे जो नहीं हुआ। मैं विशेष करके यहाँ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की महिमा और उन पर श्री चैतन्य महापुरुष जी की जो करुणा बरसित थी उसे बहुत अभिभूत, उन्हीं का ये निदर्शन है चैतन्य महापुरुष जी की करुणा का और गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रेम भक्ति का यह है कि श्री राधा रमन जी यहाँ पर विशेष करके यहाँ की सेवा परिपाटी इतनी सुंदर है, भव्य है कि यहाँ के हमारे श्री गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन इत्यादि प्राचीन श्री विक्रम, ऐसा मन में होता है कि शायद सेवा के अभाव में यहाँ से प्रकट रूप में दूर चले गए, कोई जयपुर में चले गए, कोई नाथद्वारा में चले गए, कोई कहीं, किंतु हमारे राधारमण जी अनुग्रह करके दिए कहीं इन लोगों की सेवा की परिभाषी दी है। उन्हीं की करुणा की मैं दो एक बातें मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ। गोपाल भट्ट पर कैसे श्री चैतन्य महापुरुष की करुणा, हमारे गोस्वामी ने उसको किस रूप में ग्रहण किया। श्री चैतन्य के सामने में कृष्णदास का व्यास गोस्वामी ने सिद्धरूप गोस्वामी का विदग्ध माधव का मंगलाचरण का वो श्लोक जो लिखा है उसी के ऊपर मैं दो एक बातें कहूंगा। उन्होंने लिखा है अनर्पित चरण किरात करणी आवते नंकलो समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसानु भक्ति हरिहतू वस्तुं तद्भू कदम्ब संगीत सदा हृदय संकरे सुरुत में प्रतिवत् सचिनंद। और चैतन्य महापुरुष की करुणा का क्या कहना, इनकी अपार करुणा है। ये राधा कृष्ण स्वयं दोनों विलित करुणा करुणया व किरणा कलम, ये कृष्ण स्वयं गोलोक वृंदावन नाम से गोकुल ब्रज से करुणापूर्वक अवतीर्ण किया। परम करुण कृष्ण परम रसी कृष्ण परम करुण यही हेतु एक ही हेतु कृष्ण लीला है। कृष्ण बड़े रसिक और साथ साथ में करुणा के घन समुद्र है। इन करुणा के घन समुद्र होने के नाते और परम रसिक शेखर होने के कारण चैतन्य महाप्रभु अथवा श्री कृष्ण ही अपने ब्रजधाम के साथ अपने परिकरों के साथ ब्रजधाम से इस भूतल पर प्रवेश कर करना है। रसद पाने श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत से कारण है आने का जगत में, किंतु उनमें से प्रधान हमारे कृष्णदास गोस्वामी ने चार कारण जिसमें एक मुख्य एक गौण, मुख्य में भी दो गौण मुख्य गौण प्रधान, और प्रधान में भी गौण प्रधान और प्रधान में प्रधान, जिसमें उन्होंने बतलाया धर्म की रक्षा के लिए दुष्कृति का विनाश करने के लिए, दुष्कृतियों को विनाश करने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए, युग धर्म का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु और दुष्कृति। और उसमें दूसरा बतलाया ये अनचरिंग किराज करनी आवश्यक है, अनुग्रह करके उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति श्री प्रदान करने के। तीसरा कारण द्वैताचार्य का तुलसी दल लेकर समर्पण करना, आप यदि नहीं आएंगे तो मैं विश्व का संहार कर दूंगा, आपके द्वारा ही ये जगत में धर्म की प्रतिष्ठा होगी, स्वभक्ति का प्रचार होगा, युग धर्म का प्रचारित किया जाएगा, विश्वों के द्वारा संभव कर देंगे। इन प्रसंगों को जिसे करके तत्सामयिक प्रसंगों की अवस्था देखकर असंत विवल उठे भाव में और तुलसी दल और जल देकर के भगवान को आवेदन किया, उनका सिंहासन ठीक था। कब आते, आते तो जरूर युग धर्म के लिए नाते हैं, कब आते किंतु उनका उनका यह निवेदन सुनकर प्रार्थना सुनकर को प्रतिष्ठित है। और चौथा कारण अपने लीला माधुरी का आस्वादन करने के, राधाया प्रणय महिमा सिद्धि को नई गोबा इत्यादि कृष्ण बड़े सुंदर बड़े मधुर, उनके प्रति राधा जी का प्रणय भाव क्या है, उनका जनित माधुरी, लीला माधुरी, बेन माधुरी, गुण माधुरी, ये जो विशेष चार मधुरियां हैं, इनको श्रीमती राधिका जी कैसे आस्वादन करते हैं, और इन माधुरियों को आस्वादन करके उनको कौन सा सुख होता है, उनकी दीदियों के लोग से श्री कृष्णचंद्र जी राधा जी की अंगकांति और भाव ये दोनों लेकर के व्रत में अवसर। इसमें मैं पहले बतला रहा था करुण आवश्यक न करो, कृष्ण लीला में उन्होंने ब्रज में आकर दास सख्त बादशल के मधु इन रसा का साधन किया, किंतु उनकी राधा जी की कृष्ण के प्रति कैसी प्रणय नहीं आ है, और ये प्रणय क्या है, प्रेम स्नेह मान प्रणय अथवा प्रणय मान, ये प्रणय कैसा है, प्रणय में एक ममत्व की जरूरत होती है, सेवा में भक्ति भाव ही ये ममत्व, जिसका जितना ही ममत्व अधिक रहेगा कृष्ण के प्रति उतना ही इन चीजों को वो समझ सकेगा, अनुभव कर सकेगा, ममता नहीं है प्रेम होगा ऐसा नहीं, ममता अतिशयन की तरह ममता उसमें अत्यंत प्रगाढ़ जितनी होगी उतना ही वो रस श्रेष्ठ होता है। चैतन्य महाप्रभु जी अर्थात कृष्ण ने देखा मैं प्रेम का विषय हूं और सब प्रेम के आश्रय हैं, उन समस्त आश्रय में राधा जी सबसे श्रेष्ठ आश्रय है, लागनी की सार, लागनी का सार प्रेम, प्रेम का सार महाभाव, महाभाव का स्वरूप माधव महाभाव ही श्रीमती राधिका जी का स्वरूप, अतः जब तक इस भाव को मैं लेकर के जगत में नहीं आऊंगा तब तक विश्वास का आश्रय नहीं। यहां पर कुछ वक्तव्य यह है, हमारे कुछ महानुभावों का यह विचार है गोलोक गोकुल ब्रज में राधा जी का पार्थिव भाव नहीं या गोपियों का पार्थिव भाव नहीं, केवल इस जगत में उसको लेकर के प्रकट होते हैं और इस जगत में असाधन करते हैं। कुछ महानुभावों का ऐसा भी किया है, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जी का उन्होंने अमृत प्रवाह में ऐसा लिखा है कि ऐसा विचार होने पर भी यह विचार जरा ठीक नहीं चलता। जो कि गोलोक गोकुल में नहीं है वो इनकी प्रकट लीला में कैसे सुख पद हो सकता है। इसलिए यद्यपि ये कहा गया वैकुंठ आदि से नहीं ये सब लीला प्रचार, वैकुंठ इत्यादि में इन लीलाओं का प्रचार नहीं, यहां तक कि गोलोक में भी इस लीला का अधिक प्रचार नहीं, प्रसार पाठ नहीं। विश्वनाथ चौपति ठाकुर जी ने अपने किसी श्लोक के किसी का निधन बतलाया है, यद्यपि गोकुल के गोलोक के अंतर में गोकुल है किंतु गोकुल का वैभव गोलोक है। गोलोक में स्वकीय और ऐश्वर्य भाव कृष्ण का नित्य किशोर वहां है। विश्वनाथ चौपति ठाकुर जी नित्य किशोर है वह, किंतु उसका उसमें उसमें स्वकीय भाव और उसमें कुछ ऐश्वर्य भाव है, और गोकुल में जो उसके हृदय स्थल है जिस गोकुल का जब गोलोक वैभव उस गोकुल में ब्रज में या वृंदावन में तीन लीलाएं हैं, बाल्य लीला और गंड लीला और किशोर, तीनों लीलाएं वहां पर गोल वैकुंठ ने तो बात नहीं किया, वहां का केवल ऐश्वर्य लीला है, वहां पर नारायण इत्यादि का जन्म इत्यादि नहीं है, न तो वहां पर और कोई रासलीला इत्यादि है। इसे चैतन्य महाप्रभु जी का या कृष्ण का इन लोगों से परिचित है। तो गोलोक में गोलोक गोलोक से भी उसका हृदय स्थल उसका मूल जो ब्रज गोकुल या वृंदावन है इसमें कृष्ण की बाल्य लीला है, इसलिए नंद नंद भक्तों का वहां पर भाव भी है। कृष्ण भजन नंदन श्याम सुंदर और अपने भगवान भजे तमय सद्धान वृंदावन, गोलोक में वो एक गारखाई है प्राचीर है उसमें ये सब लीलाओं का वहां पर इस तरह का तात्पम्य और वैशिष्ट रसमय भाव वहां पर प्रकटित नहीं है, किंतु गोकुल में ये सब लीलाएं हैं। इसको जानने के लिए यह भी जानना उचित है कि आचार्य लीला किसको कहते हैं, माधुर्य लीला किसको कहते हैं। भक्ति विशेष करके प्रेमा भक्ति प्रेम प्रेम में दो चीज होती है, विशेष करके ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति जो स्वभावत्मक अनुराग है जिसको रागात्मी का फल जल कहते हैं, उनमें एक संबंधात्मी का भक्ति प्रेम और दूसरा कमात्मी का, ये दो चीजें हैं। जब तक ये संबंध नहीं रहता इन तीनों में दाक्षसत्य बात कर रहे इनमें संबंध संबंधात्मी का ये भाव है, इसमें संबंध की मर्यादा को तोड़ करके कृष्ण कुछ भी नहीं करते या उनके सेवक भी नहीं करते, उस मर्यादा को बंधे हुए हैं। इसलिए संबंधानुगा में जो कृष्ण सेवा की वासना होती है वो मर्यादा के में बंधी हुई है, वो संबंध से मर्यादित होती है। ये लोग अपनी अपनी मर्यादा संसार में कृष्ण की सेवा करते हैं, उसका अतिक्रम नहीं कर सकते। और कामात्मिका में कृष्ण सेवा की वासना के अनुकूल या अनुगत होता है संबंध, या संबंध का प्रति मर्यादा होती है। उस मर्यादा में बंधन में नहीं ये लोग नहीं रहते। जैसे गोपियों ने पति सुतानुमय भ्रातृ ब्रह्मान अति विलंघते अंत अच्युता होता, ये सबको बंधन इत्यादि के मर्यादाओं को वेद धर्म लोक धर्म लज्जा शील धैर्य सबको तोड़कर, इनकी हथकड़ी देवियों को तोड़कर और कृष्ण से मिलने के लिए रात में उपस्थित हुए। इसलिए कृष्ण ने इसलिए कहा न पारे हम निरबद्ध संजुजा, मैं गोपियों कार्य कभी भी नहीं चुका सकता, अनंत काल की आयु होकर के भी देता हूं जैसी आयु पा सकते हैं। हे गोपी हे देवियों, मैं आपके ऋण से कभी भी पूरी नहीं, मैं सदा के लिए आता हूं। कृष्ण ने कहा कुछ मांग लो, न गोपियों ने कहा कि कुछ दे दो, तो अब वर मांगने के लिए भी कहने पर गोपियां क्या मांगेंगी, आप लोग से ही मांगेंगे अपनी सेवा दे दीजिए, इसलिए मैं कभी भी पूरी नहीं। दूसरी बात, इसलिए भी पूरी नहीं हो सकता, गोपियां एकनिष्ठ हैं और कृष्ण कहते हैं बहुनिष्ठ। कृष्ण ने गोपियों से प्रेम करने के लिए अपने भाई माता पिता बंधु या किसी भी एक तुच्छ से तुच्छ भक्त को भी नहीं छोड़ सकते, उसमें बंधे ही हैं। ये यथा प्रसंदे ताम कहना, लेकिन उसमें बंधे ही हैं, किसी भी भक्त को किसी के लिए नहीं छोड़ सकते। और गोपियां पतियों को छोड़ दिया, पिता माता को छोड़ दिया, सास सासू को छोड़ दिया, लोक धर्म देश धर्म मर्यादा जितनी प्रकार की मर्यादा है लोक विद्या इत्यादि सबको तुच्छ के रूप में देखा था और उनको छोड़ दिया। कृष्ण ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, वो बहुनिष्ठ उनको रहना ही होगा, किंतु गोपियों को नहीं। यदि किसी को छोड़ दिया कृष्ण ने, लाखों को गोपियों में ही केवल ले लिया जाए, यदि सब गोपियों को छोड़ करके राधा जी के पास में रहते हैं, कहता है कि आपके अपेक्षा हम किसी के पास नहीं जाए, तो बाकी कैसे हो जाएंगे। इसलिए तो ये सब जो लीलाएं हैं गोलोक के अंत प्रविष्ट में प्रकोष्ठ में, ये सब लीला वहां पर लिखते हैं। यदि वो लीलाएं वहां नहीं है ये सब, और कृष्ण वहां पर अर्थात साधन नहीं करते हैं, तो इस श्लोक में कैसे होगा, क्योंकि लिखा है कि कृष्ण जी ये सात पांच में चतुर्थ में द्वापर के अंत में ब्रज प्रहित है या प्रकाश, ब्रज को लेकर के यहां पर आए, परिसरों को लेकर के आए, ब्रज से लेकर के आए, तो जब ब्रज में ही ये पार्थिव भाव और ये सब रस नहीं है, माधुर्य रस नहीं है, केवल जगत में ही आसारण करने के लिए महाप्रभु के रूप में आए या कृष्ण के रूप में आए, तो ये कैसे संभव है। इसलिए वहां पर समस्त लीला है, उस लीला को लेकर के इस जगत में कुछ समय के लिए इस वृंदावन में बढ़ाया, वहां पर भी लीला चल रही है, यहां पर भी लीला चल रही है, ऐसे नहीं जो वहां पर खाली हो गया। गुरा किस लिए आए, करुण या अवतीर्ण फलो, प्रजकाजरा का साधन जो है यहाँ के जीवों को भी कुछ दिया जाए, कुछ आस्वादन भी किया जाए। आस्वादन करने के लिए एक विशेष बात, वो देने की बात नहीं है, इसका हम पीछे विशेषण करेंगे। जो देने के लिए चीज है उसी को लेकर के आए, वो क्या चीज है इस श्लोक में वर्णन करते हैं। करुण अवतीर्ण करुणाचार्य का हृदय द्रवित हो गया और इस जगत में आए, महाप्रभु जी की करुणा के वैशिष्ट जितने अवतार हो गए हैं सभी अवतारों से रामचंद्र इत्यादि की तो बातें क्या, ये स्वयं तत्वतः एक होने पर भी रस वैशिष्ट के माध्यम से इन लोगों में भी भगवत्ता ने भी साथ समझे चैतन्य महाप्रभु का की करुणा जब हम विचार करते हैं तो स्वयं कृष्ण के प्रकट काल में उनकी जो करुणा प्रकाशित प्रकट नहीं हुई वही कृष्ण के गौ रूप में वो करुणा प्रकाशित हुई। इसलिए करुणा से जाए कैसी करुणा है देखिए कृष्ण के समय में कृष्ण ने बड़े बड़े असुरों का संहार किया उनको मुक्ति भी दी उतना जैसी राक्षसी को केवल देश मात्र से माता का देश बनाया और कपट देश में लेकर के उनको दूध पिलाने का भान किया जबकि उसका उद्देश्य था उसको मारने के लिए किंतु उसे धातु किसान गति दी ये किसी भी लीला में ये कभी सभी संभव करने हुई और दूसरे अवतार में यहां तक कि कृष्ण ने लताओं को भी गुलमों को भी कृष्ण का तृष्ठ किसी भी अवतार में यह प्रेम नहीं दिया गया सबको उन्होंने प्रेम दिया किंतु कृष्णचंद्र जी ने वो नहीं करना चाहिए जो महाप्रभु की करना हो यही हम लोग दिखला रहे हैं जिसका आज क्या ये असुरों को उन्होंने मारा गतियां दे दी किंतु उनको ये नहीं उस जन्म में उनको अनुभव न हो ये कृष्ण हमारे ऊपर में दया की पुतलों को मारा सुतना को मारा आधार को मारा बकार को मारा और सबको मारा उनके जितने परिवार जन के लोग थे उन लोगों ने किसी ने अनुभव नहीं किया उस जीवन में जब कृष्ण ने दया ही पड़ती है जब पुतला मरी तो उसका भाई बकी बकासु और अघासु ये दोनों उसके भैया हैं बदला लेने के लिए और कृष्ण पर वैसे ही अघासुर बन करके और बक बन करके उनका प्राण संहार करना चाहे देश में भर उसी तरह से महाभारत युद्ध में भी देखा जाता है सब लोगों ने किसी ने भी उस जीवन में उनकी करुणा की उपलब्धि नहीं की और महाप्रभु पर गया एक तो महाप्रभु जी ने किसी को प्राण से संघात नहीं किया दूसरे दूसरे अवतारों में राम आदि अवतारों में उन्होंने ध्वंस बाण और चक्र और दूसरे तीसरे तीसरे लोगों को असुरों का संघात किया महाप्रभु जी ने किया उनका आसुरी भाव हरण कर दिया इसलिए वो हरण और साथ साथ उसने प्रेम की बीज बो दी और लोगों ने उसी जन्म में अनुभव किया कि चैतन्य महाप्रभु के प्रभु के हमारे ऊपर में कैसी कृपा है सबसे पहले जगाई बधाई को लीजिए वो लोग असुख से लीजिए महाप्रभु जी ने उनका वध नहीं किया बस हृदय से लगा लिया कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कहते 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 हरि बोल करते करते प्रेम में अधीन होकर के उन्हें लगे और चरण में जुट गए जगत को पवित्र बनाने वाले बन गए महाप्रभु की करुणा की उपलब्धि की उसी जन्म में रूप सनातन के ऊपर में उन्होंने करुणा की गोपाल भट्ट जी के ऊपर में उन्होंने करुणा की श्रीमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती पर उन्होंने कृपा की वेंकट भट्ट पर कृपा की उन लोगों ने अनुभव किया महाप्रभु जी दक्षिण देश में गए कावरी के तट पर श्री अनुभव चार महीना महारे पहले से मंदिर में गए जबकि वो नृत्य करने लगे आवेश में सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए ऐसा तो हमने सन्यासी और किसी को देखा नहीं जो लोग थे जब देख रहे थे वो भी उनके साथ साथ मिलकर तो भी नृत्य करने लगे हरि बोल करने लगे विशेष करके वहां के ये तीन भाई और उनके पुत्र एक गोपाल भट्ट जी उस समय बहुत छोटे थे 11 वर्ष के थे हमारे गौ किशोर पूज्यपाद गौ किशोर दास गौ कृष्ण जी गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर गोपाल भट्ट का जीवन चरित्र पर अब कुछ गोस्वामी का उसमें परिचय बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ लिखा है आप लोग देखेंगे इसमें महाप्रभु जी की करुणा, उनका अवदान, गोपाल भट्ट गोस्वामी का कि महत्ता इत्यादि के संबंध में उन्होंने बहुत बुरी बुरी लिखा है। बहुत ही सुंदर पुस्तक, मैंने उसका पढ़ा था, उसका बेटा मेरे भाव में भी जोर हो गया थी, बहुत यथार्थ में ये लोग विद्वान देते हैं। महाप्रभु जी वहां गए, देखा तीन भाइयों ने, उन्होंने आकर्षित हुए। महाप्रभु जी ने ये स्थिर किया कि बरसा का चार साल मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, इससे बात नहीं। तो वहां खड़ गए, कावड़ों ने स्नान किया, दर्शन करना। इन लोगों ने कहा कि हमारे यहां पर आज प्रसाद नहीं, दीक्षा हमारी नहीं, श्रीमल भट्ट प्रधानमंत्री सरस्वती और ये सब बड़े बड़े विद्वान थे, अगाध विद्वान, सिख संप्रदाय के बहुत अगाध विद्वान थे। विशेष करके वेदांत शास्त्र में जो भक्ति का वेदांत, वेदांत भक्ति शास्त्र है, इसमें पूर्ण प्रारंभ है। वैसे लेखक भी थे, सुसाहित्य संस्कृत के बहुत परिभाषित विद्वान थे, धुरंधर और सिद्धांत में निपुण थे। महाप्रभु जी को अपने घर में रखा, महाप्रभु जी का आसन करते थे, प्रतिदिन निकाल दर्शन करते थे श्रीरंगम में आकर मंदिर में, और महाप्रभु जी वहां पर है। महाप्रभु तो चुपचाप बैठने वाले नहीं है, कुछ न कुछ तो प्रसन्न करेंगे, उसी के लिए तो आए हैं, इन चारों को कृपा करने के लिए श्रीरंगम में गए। उन्होंने एक दिन पूछा, देखा क्या इन तीनों भाइयों है तो बड़े विद्वान, कुछ लोग ये भी कहते हैं जैसे चैतन्य चैतन्य भागवत इत्यादि में चैतन्य के सामिश में तो ये वर्णन नहीं गया, तीनों भाई वहां पर थे और गोपाल भट्ट थे। भक्ति रत्नाकर में ऐसा स्पष्ट लिखा है, वो भी प्रमाणित है, तीनों भाई वहां पर उपस्थित थे। महाप्रभु जी ने लेकिन उनसे पूछा कैसे भट्ट थे, उनको अभिमान था, इस बात का अभिमान था, पर तत्व नारायण कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंश हैं, भागवत तो नहीं पढ़े हैं, शास्त्र भी पढ़े थे, किंतु उनमें विष्णु पुराण उनमें प्रमाणित माना जाता है, इसलिए उनको यह अभिमान था सबसे पर तत्व जो है सत्य की पर अंतिम सीमा ये नारायण तत्व है, ये सारी स्वर्गीय सारी। और कृष्ण की यही जो मत जो उनकी लीला है यही सर्वोत्तम है, वो अवतार नहीं लेते। महाप्रभु जी ने उनसे परिहास के रूप में सीधे सरल शब्दों में उनसे पूछा कुछ प्रश्न, लक्ष्मी जी क्यों नारायण को छोड़कर के और कृष्ण के राज इत्यादि में सम्मिलित होने की वासना करती हैं, तुमसे सेवा करने की वासना नहीं है, बतलाओ तो। उन्होंने आज तक ऐसा प्रश्न नहीं सुना, कभी कहा ऐसा लिखा है, कश्यान भाव अश्वनति एक विस्म है, बड़े सरल स्वभाव से महाप्रभु, किसी के साथ में महाप्रभु जी तर्क नहीं करते। काशी में भी आए पंडितों की सभा में उन्होंने अपने आप तर्क नहीं आरंभ किया, उन्होंने तर्कों का कुछ उत्तर दिया, सामंजस्य किया। हमारे साधवन भट्टाचार्य से भी महाप्रभु जी ने कुछ तर्क नहीं किया, बल्कि उनके विचारों का बड़े मधुर से स्वाभाविक सरल सरल ढंग से उनका समाधान कर दिया, ये सर्वोत्तम गुणों के पास। महाप्रभु ने इसी शिष्य को पहचान दिया, बड़े बड़े विद्वानों को चौड़ ने चुका दिया, जगत देकर के आश्चर्य बना दिया। कुछ लोगों के साथ भट्टाचार्य जी, राय रामानंद जी, धर्मरूप सनातन जी, इधर में प्रकाशानंद सरस्वती जी, ऐसे लोगों का आकर्षण किया कि जगत अपने आप उनके चरण में जुड़ गया। तो उन्होंने बताया देखो तत्वतः कृष्ण और नारायण एक ही तत्व है, किंतु रस के द्वारा उनका तारतम्य है, एक ही चंद्र में 16 कलाएं होती हैं, ये कलाओं का अंतर जरूर मानना पड़ेगा, किंतु चंद्र में अंतर है ये नहीं मानना पड़ेगा। उसी तरह से भगवत्ता में तारतम्य है रस के विचार से, तत्वतः विचार वो नहीं है, तत्वतः एक ही तत्व है। इसलिए लक्ष्मी जी यदि ऐसा चाहती है कृष्ण के रूप पर, उनके गुणों पर, उनके माध्यम भी प्रमुख होती हैं, तो ये कोई बात नहीं। और उन्होंने श्रीमद्भागवत के सारे उदाहरण लेकर उनके सामने प्रस्तुत किए, आकर्षित महापुरुष की कल्पना करते हैं, उनको सी संप्रदाय से निकाल सकते हैं और कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम रस ने उनको सारा दूर कर दिया। ये चार व्यक्ति ही महाप्रभु के अंगत हो, ये जो कृपा थी गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर में, जो उस समय के दिग्गज विद्वान में से ये तीनों भाई थे, उनके ये पुत्र थे, दैव भक्त थे, उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने पुस्तक उस समय कई कार्य की थी, लिखी थी, उसी समय सर्वसंदर्भ, उसी समय में उन्होंने हमारे गोपाल भट्ट जी की बीच वहीं पर लिखा, उन्होंने महाप्रभु जी के आदेश से उनका संकलन उन्होंने नहीं किया, पीछे से यहाँ आकर के जीव गोस्वामी के द्वारा विशेष रूप में पूजा पर वो विषयों का अनुसार में यह सत्संग किए, किंतु मूल कृति नहीं की है। जीव गोस्वामी का भी कर्तित्व है किंतु उन्हीं का नहीं है, यह जाता है उन्हीं के पक्ष में जाता है। हरिभक्ति विलास इत्यादि उसका उन्होंने संकलन उन्होंने किया, हमारे सनातन गोस्वामी के निर्देश के अनुसार, जैसे जैसे गोस्वामी ने कहा विशेष रूप सनातन जी ने जैसा किया उनके आदेश का ही किया। तो उनको कहा वो इस संप्रदाय में ऐश्वर्य मार्ग के उपासक और उनको राधा कृष्ण के रस में सारा बोल कर दिया, राधा रमण की सेवा अर्पित कर दी, उनके लिए सालग्राम भी बन गए राधा रमण, उनके प्रेम में भी गौरव करके बसी चूक, ऐसा कहीं भूतों भविष्य में ऐसा नहीं देखा जाता। ये महापुरुष की करुणा उन लोगों ने उपलब्ध भी की, गोपाल भट्ट जी ने अनुभव किया, उनके ग्रंथों ने यह सब किया है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को आप लोग जानते ही, इसी तरह से जितने लोगों के ऊपर उन्होंने करुणा की उन सब लोगों ने उन करुणा की उपलब्धि इसी जन्म में की और उनके तीर लिंग बन गए। साधु भट्टाचार्य से लेकर के प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि सभी उनके तीर लिंग बन गए, उन्होंने अनुभव किया कृष्ण लीला में अनुभव की बात नहीं, इसलिए उनकी कृपा से महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं इनकी महिमा का उनकी करुणा का उत्कर्ष है। दूसरी बात, कृष्ण लीला में यह देखा जाता है, ये जथा माम प्रपद जनते ताम तथा व भजाम्य, ताम तथा व भजाम्य, हम कृष्ण की ऐसी प्रति जो जैसा भक्ति करेगा उसके अनुरूप ही उसको फल देंगे, उतना ही फल देंगे। महाप्रभु में ये नहीं, महाप्रभु का करुणा का वैशिष्ट्य क्या है, उनकी करुणा का वैशिष्ट्य क्या है, प्रेम तो देते ही, जिसके पास में प्रेम नहीं उसको पात्र देकर के प्रेम भर देते हैं, ये महाप्रभु की विशेष करुणा है। जिनका अंदर में पात्र ही नहीं है उनको पात्र ही देते हैं, जिसके तरफ में देखा जहां जहां दूर दर्शन जहां आई से कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम आई से जा, अरे मनुष्यों की तो बात क्या है, पशु प्रेम लता जुलम हाथी तक मृग सबको कृष्ण प्रेम दे दिया, हाथी झूकने से करके कृष्ण कृष्ण कहने प्रेम में भी हो गए। चतुर्थ महापुरुष ये सब देखा उदाहरण प्रेम दे दिया, वो बाघ भालू क्या पात्र थे, इसलिए महाप्रभु की करुणा ये वही कृष्ण ही करुणावतीर्ण करो, करुणा दान करने के लिए जगत में आए, इसलिए उन्होंने पात्रता दे करके पात्र भी दिया और प्रेम भी दे दिया। और कौन प्रेम किया, जो ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम सबा कार्य क्या सबका ब्रह्मा का जो दुर्लभ प्रेम है, प्रेस्तु अपि असुलभम नर प्रभु जी जो उनके प्रेमी भक्त हैं, यहां तक कि उद्धव जो परम प्रेष्ठ उनके हैं, इन लोगों की रीति दुर्लभ और जगत के जीवों के लिए करुणा का सत्य के देव, इसलिए करुणा व तिरणा करो, ये चैतन्य महाप्रभु करुणा करने के लिए नहीं देने के लिए ही आए। क्या चीज देने के लिए, जो चीज आज तक बहुत दिनों तक नहीं दी गई, एक कल्प पहले जब चैतन्य महाप्रभु पिछली बार भी कृष्ण के बाद अपनी लीला का प्रकाश किया उस समय में दिया गया और तब से अभी तक किसी ने कृष्ण लीला भी में नहीं दिया गया, प्रेम का आस्वादन उन्होंने किया, कुछ लताओं पताओं को दिया, किंतु व्यापक रूप में जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जो सामने आया उसी को कृष्ण प्रेम दिया ऐसा नहीं दिया। गौर नित्यानंद है ना ही ये सब विचार चैतन्य महाप्रभु अवतार वह प्रेमामृत बन जाए ये बन जाए जैना भाषे से जीव खार कोटि कल्प जन्म नहीं सहार उद्धार किस चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद है ना ही ये सब नाम लेंगे प्रेम दें वह अस्तुधार ये चैतन्य महाप्रभु की परमा का वैशिष्ट है इसलिए सब में आवतीन करो चैतन्य महाप्रभु करना के लिए सबको पात्र भी दिया और भर भर करके प्रेम दिया जो ब्रह्मा इत्यादि के लिए नारद इत्यादि के लिए यहाँ तक उद्धव के लिए भी जो चीजें संभव नहीं था वो देने के लिए क्या देने के लिए इतने दिनों के बाद में जिसको जदे कभी कांप गए उनका हाथ नहीं चला कृष्ण स्वयं आकर के लिख दिया खंडनम मम शिवति मंडनम देवी पद पल्लव मुदा वो जगह नहीं सके उनका हृदय कांप गया राधा जी उनकी तो शक्ति है राधा जी को कैसे कहेंगे अपने चरण हमारे से पर रखो मैं तुम्हारे चरणों में अपना शीश नवाता हूं मुझे क्षमा करें जगह नहीं लिख सके इसलिए पहले ये सब चीजें नहीं थी महाप्रभु के बाद ही आने के बाद हमारे गोस्वामियों ने ऐसा लिखा जे कृष्ण क्या करते हैं हमारे प्रभुदानंद सरस्वती जी लिख रहे हैं जबकिन करी बहुत फलुका अपमान नित्यम परस्त पुरुष शिखंड मौले जगार सुधे सुभान जाया सुखे कुंज भवन अंदर मार्ग नित्या ये लिख सकते हैं जय गोस्वामी जब उतना ही नहीं लिख सके तो ये सब क्या लिखे रूप रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी की तो बात ही क्या खास कमरे के लोग ये मंजर यहाँ अपनी है इसलिए इन लोगों ने चीज जो लिखा है महाप्रभु के पहले किसी की भी हिम्मत नहीं हुई फिर ऐसा साहस नहीं हुआ जो ऐसे अपना कलम उस पर लिखे रूप गोस्वामी ने तो रूप गोस्वामी कैसे कहते हैं श्रीमती राधिका जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि देखो आएगा ना कावार उसको मत आने देना यहां वो स्त्री भेद बना करके सुबल आएगा सुबल का वैश्य इसलिए उसको सुबल का जो सखा कृष्ण जो स्त्री का भेद बना करके आएगा कुंज के बातों से रोक देना कभी खबरदार हमारे यहां मकानी ऑफिस वहां पर सबके हाथ जोड़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं उनकी दासी का तो राधा जी की तो बात इसलिए ये सब प्रेम का प्रचार नहीं था महाप्रभु के आने के बाद में हुआ इसी प्रेम को देने के लिए महाप्रभु इसलिए यहां पर कह रहे हैं समर्पयितुं तुम उन्नतोज्वल अर्थां स्वभक्ति श्रियं करुणया करुणा पूर्वक उस चीज को जो ब्रह्मत्यादि के लिए आपको पहले बताया सबके लिए जो सुलभ नहीं था वह प्रेम देने के लिए महाप्रभु जी समर्पयितुं तुम वो करुणा किस चीज को देने के लिए आए उन्नत उज्ज्वल अर्थां स्वभक्ति श्रियं उन्नत और उज्ज्वल रस उन्नत क्या है किस प्रकार से उन्नत क्या प्रकार के भाव बताए गए हमारे भक्ति के सामने सिंधु ने बताए गए संत को अभी छोड़ देते हैं दास सबसे बात करने के लोग ये सभी उन्नत विशेष करके ब्रज के ये भाव है बैठों से इत्यादि नहीं या पहले बतलाया गया इनमें भी दास से सप्त सप्त से बात्सल्य और बात्सल्य से मधुर किस लिए सेवा की वासना से जिसमें जिस प्रेम में ममत्व अधिक है ममता अति अति सायानुभूत और चित्त को ग्रहण कर देता है यह भाव जिसमें रहेगा ममता अधिक रहेगी वो उन्नत है इसलिए क्रमशः इनसे मथुर सबसे उन्नत है दूसरी बात रस भी इसी प्रकार से रस है शांत रस दास रस सप्तर रस वात्सल्य रस और मथुर को ही उन्नत उज्ज्वल रस कहते हैं तो वहां पर सभी रस है सुंदर एक एक से मधुर है कृष्ण को तृप्त कर देते हैं किंतु फिर भी उन्नत उज्ज्वल से संबंधित रहता है उसको बताते हैं मत्कुट है, वो क्यों कहे? उसमें सभी है, जैसे पंचभूतों का उदाहरण देकर के बतलाया, समय हो रहा है इसलिए 5 बजे का आरती होगी, तो मैं समाप्त कर दूंगा। अब 10-5 मिनट और। तो कहते हैं उज्जवल किसको कहते हैं? सभी रस्त उज्जवल ही हैं, उन्नत और उज्जवल सभी हैं, चारों एक एक से हैं। किंतु फिर भी जब हम विचार करते हैं रस की दृष्टि से, ममता की दृष्टि से, तो ममता की दृष्टि से दस्त की अपेक्षा सख्य और सख्य की अपेक्षा बात्सल्य, बात्सल्य से अवधारित ममता मधुर गोपियों से। इसका चेतन में चलता मित्र विशेष रूप से यह सब वर्णन किया जाता है। मैं ये सब बतला रहा हूं महाप्रभु की करुणा के लिए, करुणा का अवधान बतलाने के लिए मैं बतला रहा हूं, पहले इस चीज को समझ लिया जाए। इसलिए कहते हैं कि उज्ज्वल किसको कहते हैं? कोई चीज निर्मल होने पर उन्नत उज्ज्वल होती है, जैसे कांच निर्मल होता है, सूर्य की रश्मियों का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है तो वह झकझक करता है, उसके तरफ हम देख नहीं सकते, तो सभी उन्नत हैं, ये चारों ही निर्मल हैं, ब्रज का जितना भाव है सभी, किंतु सिद्धि तात्पर्य है। ये तात्पर्य किस लिए है? सेवा की वासना जिस रस में प्रतिबिंबित होने पर और वो छत्र करता है उसके ऊपर में निर्भर करता है। कृष्ण की सेवा की वासना यही मूल चीज है भक्ति, यही जीवों का अनुबंधी भाव है। जीव में भी अनुभव रूप में अच्छा भी